તારીખ 29/7/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 218 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 158
સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 218 137 कल चला था विषय, फिर से लेते हैं। बारंबार इसी जाति का विचार चले, क्या उसको भावना कह सकते हैं? ये प्रश्न बहुत प्रयोजनभूत है। मुमुक्षु यहाँ भूल कर लेता है, क्योंकि अल्प भावना से सत्संग करता है। सत्संग में बुद्धि से ये बात उनको समझ में आती है कि यही विचार करना चाहिए, आत्मा के ही विचार करने चाहिए और बार बार यही करना चाहिए, इसलिए वो बार बार विचार करता है। पहले दूसरे विचार चलते थे, अब दूसरे नहीं चलते हैं, यही चलते हैं, पर चलते चलते आदत भी हो जाती है। मान लेता है कि हमको भावना बड़ी है या हमारी भावना अंतर की है, अंदर से है, तो हमको वैसा वहां नहीं होता है और ये भूल में धोखा में रह जाता है। रटन से, आदत से बार बार विकल्प हो जाए, विचार हुआ करे, इसका मतलब भावना नहीं है। भावना अंतर के उन्नान से आती है। खास बात तो बेंसरी ने वो लिया, एक अंदर से, गांड से, हृदय को भेद करके, चीर करके, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं। लेकिन खरी भावना वाले का कोई मोटा स्वरूप है तो समझ में अच्छी तरह आ सकता है। अंदर से, उंगान से, हृदय से समझ में नहीं आए, तो बार बार आता है तो अंदर से ही होना चाहिए। उसके लिए छटपटाहट हो जाए। अंतर की भावना में क्या होता है, छटपटाहट होती है। हमारे गुजराती में उसको कहते हैं तालावेली, चटपटी, चटपटी पन कैसे, तालावेली कैसे, कि इसका मतलब क्या हुआ कि रह नहीं सके और विचार करने वाले को बार बार स्मरण में लाना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है, उपयोग देना पड़ता है। वो एक बात होगी और रह नहीं सके वो दूसरी बात होगी। दोनों में बहुत अंतर है। कि अपनी भावना साकार नहीं हुए वहां तक उसको चैन नहीं रहे, बेचैनी चालू रहे, असंतोष चालू रहे। तो उसमें अंतर होता है हमेशा। भावना में और विचार में बहुत अंतर है। दूसरा एक वो भी तलाश करने लायक चेकिंग पॉइंट है, वो है कि विचार करने वाले को दूसरे उदय भाव के परिणाम आएंगे, कभी बह जाएगा। खुद को ख्याल नहीं रहेगा, खुद को ख्याल नहीं रहेगा कि मेरे परिणाम ऐसे हो गए। मैं जो शाम को चर्चा चलती है और बहुभाग मुमुक्षु जो अपने परिणामों की चर्चा करते हैं, उसमें मुख्य बात कॉमन फैक्टर वो है कि हमको ऐसे परिणाम हो गए, हमको ऐसे परिणाम हो गए, ऐसा उदय आया ऐसे परिणाम हो गए, ऐसा प्रसंग हुआ ऐसे परिणाम हो गए। तो थोड़ा ख्याल रहता है। सब वो जो दुख दिखाते हैं वो तो सारे दिन के कुछ एक परिणाम दिखाते हैं, बहुत से परिणाम तो ध्यान बार जाते हैं, लक्ष्य में आते नहीं, पकड़ में आते नहीं, जागृति रहती नहीं। भावना वाले को सहज जागृति रहती है। कैसे? कि भावना है एक कोमल फीलिंग है, कोमलता बहुत है उसमें, और इसके विरुद्ध जो परिणाम उदय में जाते हैं उसमें उसको ठेस पहुंचती है। ठेस पहुंचने से पता चल जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो भावना को हर्ट करने वाले जितने भी परिणाम आएंगे, जागृत रहना नहीं पड़ेगा, जागृति अपने आप आ जाएगी और आगे रस नहीं बढ़ेगा। बहुभाग तो परिणाम उत्पन्न ही नहीं होंगे भावना के विरुद्ध, क्योंकि भावना में एक वेग होता है, आवेग होता है, संवेग होता है, तो कुछ परिणाम तो कितने तो होंगे नहीं, कुछ हो जाएंगे तो उसकी जागृति आ जाएगी। ये चेकिंग पॉइंट है इसका, चेक करने का। और चटपटाहट हुए, चटपटी लगे, ये भी इसका लक्षण है। विचार वालों को ऐसा नहीं होता, विचार वाले को एक निश्चय किया है बौद्धिक स्तर पे, बौद्धिक लेवल पे एक विचार किया है कि हमको दूसरे दूसरे विचार में नहीं जाना है, हमको यही काम करना है, आत्मा का ही विचार करना है, आत्मस्वरूप का ही विचार करना है। और इसके लिए व्यवस्था बिठा देते हैं कि चलो अपन व्यवसाय से निवृत्त हो जाए, प्रवृत्ति क्षेत्र से भी निवृत्त होकर के कोई निवृत्ति क्षेत्र में अपना स्थान वहां रखे, रहने का स्थान बदल दें, व्यवसाय वगैरह छोड़ दें, तो दूसरे दूसरे विचार का जो प्रसंग है वो नहीं रहता है। और पुण्य योग होता है तो ये व्यवस्था बैठ भी जाती है, पुण्य योग होता है तो नहीं भी बैठे, फिर भी एक निश्चय किया है कि हमको आत्मा का विचार करना है तो बार बार विचार करता है। परंतु इसका मतलब वो नहीं है कि उसको भावना है, भावना अलग चीज होती है। और भावना का जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रारंभ में ये एक नींव का पत्थर है, फाउंडेशन स्टोन है, सारे पूर्ण पद मोक्ष पाने में कोई फाउंडेशन स्टोन है, नींव का पत्थर है, तो ये भावना है। इसलिए इस विषय में हमें धोखा नहीं खाना चाहिए, उसको बराबर समझे और बराबर भावना में हम आए। भावना में नहीं आएंगे कोई काम होने वाला नहीं है। चाहे कितना भी पढ़ ले, कितना भी सुन ले, कितना भी विचार कर ले, बिना भावना ये सब कोरा कोरा, सब परिणाम का प्रकार कोरा रहेगा, ऐसा रहेगा, कोरा रहेगा। समूह शरण में हम गए, भगवान साक्षात विराजते थे वहां, कोरा रह गए हैं, जबकि भावना से हृदय भीगा हुआ रहता है। वो बेंसरी का तो खास गुजराती में वो सुंदर था कि मुमुक्षु नु हृदय भावना थी भींजायेलु रहू जोईए, नितरती भावना, केवी नितरती, समझे,
झरती,
ऐसे कपड़े को नीचे यानी वैसे ही सुखाते तो पानी उसमें से गिरता है, हाँ टपकती हुई तो दिखता है कपड़ा भीगा है। ऐसे भावना से भीगा हुआ जो हृदय है, भिंजायेला हृदय है, नितरती भावना, ऐसे टपकती भावना, ऐसी भावना होती है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति सहज है। क्यों नहीं होता है वो प्रश्न वहां नहीं रहता, वैसे के पास एक बहुत बूढ़ी बाई आई थी, बोले के क्या करे, हमारा तो शरीर ऐसा हो गया कि हम चल नहीं सकते, कान में गड़बड़ हो गई है तो सुन नहीं सकते, आंख से पढ़ नहीं सकते, सारे जीवन कुछ किया नहीं, अभी बुढ़ापा में ये सब हो गया, कोई साधन काम नहीं आते, क्या करें, रोने लगे, हमको कुछ याद नहीं रहता, क्या स्मरण शक्ति भी कम हो गई है, ऐसा करके उन्होंने क्या बोला, और हम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, विद्वत्ता नहीं, ज्यादा समझते नहीं, बोले कि कोई बात नहीं है, इसमें क्या हो गया, आप तो भावना वाली है, भावना और बढ़ाओ, न उसमें ग्रंथ की जरूरत है, न उसमें आंख की जरूरत है, न उसमें कान की जरूरत है, न उसमें शरीर की तंदुरुस्ती की भी जरूरत है, शरीर बीमार रहता है तो भले ही रहो, बिस्तर पर लेटे लेटे भावना बढ़ सकती है कि नहीं बढ़ सकती है? तो बढ़ सकती है, बीमार है और बिस्तर पर लेटना रहता है तो क्या भावना खत्म हो जाती है क्या? अरे भावना का तो ऐसा स्वरूप है कि प्रतिकूलता में और बढ़े, जितनी प्रतिकूलता बढ़े उतनी भावना और बढ़े, क्योंकि भावना में एक प्रेम तत्व है, अपना आत्म कल्याण का प्रेम है, आत्मा का प्रेम जिसको बोला जाता है, और प्रेम ऐसा होता है कि संयोग में भी बढ़े और वियोग में भी और बढ़े, कैसे बढ़े, और बढ़े, संयोग में दोगुना हुए तो वियोग में चार गुना हुए, और फिर संयोग हो गए तो आठ गुना, डबल डबल होता जाए, होता है कि नहीं होता है? संसार में भी ऐसा होता है, तो ये तो अपना स्वरूप है, अनंत गुण का निधान ऐसा है, अनंत गुण का निधान, इसमें अनंत सुख का भी निधान, तो अपने में निधान भरा है, उसको खोलना है, दरवाजा बंद कर रखा है, ताला लगा करके चाबी खो दिया है, अब ये भावना के मास्टर की शक्ति से खोल देना है तो कितने आसान बात है। मार्ग कितना आसान है, सिर्फ भावना का विषय है, इतना आसान है। इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि आपने उतना दान दिया कि नहीं, उतना उपवास किया कि नहीं, इतना जाप जप करके माला फेरी के नहीं, मंदिर दर्शन को जाते के नहीं, ये ग्रंथ फलाने फलाने ग्रंथ पढ़े के नहीं, सुने के नहीं, कुछ नहीं। अनकंडीशनल ये चीज आपको उपलब्ध हो सकती है, कोई शर्त नहीं कि आपने बहुत संसार के परिणाम बहुत कर दिए इसलिए भावना नहीं हो सकती है, ऐसी बात भी नहीं है कि पूर्व में पाप ज्यादा कर लिया था पुण्य कम किया था इसलिए भावना नहीं हो सकती है, तो बात भी नहीं है। कोई कैसा भी हो भूतकाल में देखने की जरूरत नहीं, क्या देखने की जरूरत नहीं। वर्तमान में भावना जगी, सही जगी, सबको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा, इतनी ताकत है इस चीज में, क्योंकि ये आत्मा में से उत्पन्न हुई चीज है। जो आत्मा अनंत शक्ति का धनी है, खजाना है, भंडार है, इसका ये सबूत है कि इसकी भावना में इतनी ताकत है, ये आत्मा की अनंत शक्ति का सबूत है कि इसकी भावना में उतनी ताकत है तो कुछ कोई भी बिना शर्त सबसे आगे निकल जाती है। तो ये आत्मा की अनंत शक्ति का पर्चा, वो कहते हैं देव देवियों का पर्चा मिलता है, ये आत्मदेव का पर्चा है। देखो चमत्कार, पर्चा को चमत्कार, चैतन्य का चमत्कार, पूरा जीवन बदल जाएगा। एक ही फैक्टर है भावना का, प्रभाव जीव भूल खाता है। प्रश्न बहुत अच्छा उठाया है।
श्री भावना और यथार्थ मुमुक्षुता में क्या फर्क है? यथार्थ मुमुक्षुता
मुमुक्षुता का यही लक्षण है, यथार्थ मुमुक्षुता का लक्षण है कि जो यथार्थ मुमुक्षु है उसका हृदय भावना से भीगा हुआ रहता है। ये कोमल भी है और कठोर भी है। कठोर कैसे? कि प्रतिकूलता से भावना समाप्त नहीं होती। कोमल है इसलिए प्रतिकूलता से दब जाएगी, वो बात नहीं है। इस सभी प्रतिकूलता को तोड़ फोड़ करके आगे निकल जाएगी। क्या करेगी? तोड़ फोड़ भी करेगी। हाँ, ब्लास्टिंग पावर है उसमें। जैसे पेट्रोल है तो पानी जैसा है, कोमल लिक्विड है, सॉलिड है, उसमें कोई ताकत ज्यादा दिखती है। 100 ग्राम का पत्थर लगा मारे और 100 ग्राम का पानी मारे तो पानी लगेगा नहीं, पत्थर से तो खून निकल जाएगा। फिर भी पत्थर से पानी की ताकत ज्यादा है कोमल होते हुए। क्यों? तो पानी पत्थर को तोड़ता है, पत्थर पानी को कुछ नहीं कर सकता, तोड़ता नहीं, कुछ नहीं कर सकता। नदी में जितनी भी रेत है वो पानी ने पत्थर को तोड़ तोड़ करके बना दी है, चूर चूर कर दिया है पत्थर को। ऐसे भावना तोड़ फोड़ करके आगे निकलती है। किसी को भी नहीं गिनी। विश्व में कोई ताकत नहीं इसके सामने, समझ लो कोई ताकत नहीं है कि भावना को मिटा सके, ना नाश कर सके या समाप्त कर सके। विश्व में कोई ताकत नहीं है। तो ये चीज नींव में जिसको पड़ी है उसको परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, उसका जन्म मरण का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मुक्त आत्माओं को जन्म मरण होता है। ये मुक्ति में आ जाता है। जिसको जन्म मरण नहीं है उसको संसार का कौन सी समस्या रही थी, कौन सा दुख रहा, ये बताओ। जब संसार ही नहीं रहा तो संसार का दुख कहाँ रहा? सब संसार समुद्र सूख गया तो तिरने का परिश्रम बंद खत्म हो गया। इतना बड़ा समुद्र कैसे तिरेंगे, बात ही खत्म हो गई। ये भावना का स्वरूप है और उसको अच्छी तरह समझ करके भावना में आना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। दो सौ उन्नीस, ज्ञान में समझ में आता है। ज्ञान में मैंने बुद्धि में, ज्ञान माने बुद्धि में ये सब बात समझ में आती है। तो हम लोग तो बुद्धि वाले हैं ही, पेट भरते हैं बुद्धि से, शारीरिक परिश्रम उतना नहीं करना पड़ता है जितना बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो समझ में तो आती है परंतु विश्वास नहीं आता। जैसे सुख आत्मा में है और आत्मा का सुख सिवा आत्मा और कहीं जगह नहीं है,
बराबर।
न मिठाई में सुख है, न शरीर में सुख है, न गाड़ी में सुख है, न मकान में सुख है, न पैसे में है, कोई भी चीज में नहीं है। पंचेंद्रिय के जितने भी विषय है उसमें सुख नहीं है, न संगीत में है, न सुगंध में है। ये सब परमाणु है, जड़ है और सुख से खाली है, शून्य है। अब देख लो उसको, परमाणु को देख लो, कहीं सुख देखने में नहीं आएगा। इसलिए ये सब प्राप्त होते हुए भी किसी को सुख मिला नहीं, किसी को सुख हुआ नहीं, किसी को तृप्ति हुई नहीं, ये इसका सबूत है। सुख नहीं है इसका ये सबूत है। पर सुख आत्मा में है लेकिन इसका अनुभव हुआ नहीं। आत्मा में जो सुख है, निराकुल सुख शांति, इसका अनुभव हुआ नहीं। तो इस परिस्थिति में सुख की कल्पना, भ्रमणा, भ्रांति परमाणु के किसी न किसी पर्याय में, किसी न किसी अवस्था में अनादि से वो तो बन गई है, भ्रांति तो चालू ही है, वो तो नहीं बनानी है नहीं। उसी परिस्थिति चालू है पर सूती परिस्थिति का अनुभव नहीं है। इस परिस्थिति में विश्वास नहीं आता। क्या होता है? विश्वास नहीं आता। और बाह्य पदार्थ में, बाह्य विषय में सुख है, इसका विश्वास जमा हुआ है। क्या है? जम गया है, इसलिए बदलता नहीं। नया विश्वास आता नहीं, पुराना विश्वास बदलता नहीं। ये हमारी परिस्थिति है, तो क्या करें? प्रश्न वो है, समस्या है, इसका समाधान।
वैसे इसका मतलब तो ये हुआ कि श्रद्धा ज्ञान को खींच के लेके आती है,
ज्ञान श्रद्धा को पैदा करता है।
यहाँ पर माता जी जुदा कह रहे हैं?
नहीं, ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है। ये ज्ञान शक्ति और श्रद्धा शक्ति का साइंस है, विज्ञान है। जाने बिना किसकी श्रद्धा? कोई गधे के सिंह की श्रद्धा हो सकती है क्या? खरगोश के सिंह की श्रद्धा हो सकती है क्या? नहीं। लेकिन जानने जानने में फर्क है। किस प्रकार से जाने तो श्रद्धा पैदा हो जाए, और किस प्रकार से जानने से जानने पर भी श्रद्धा पैदा नहीं हुए, उत्पन्न नहीं हुए, ये समझने का विषय है। इसलिए जानना मैंने समझना यथार्थ प्रकार से होना चाहिए। तो अपने यहाँ वो चर्चा का विषय स्पष्ट है कि परलक्ष की परलक्ष से वाली जानकारी विश्वास को या श्रद्धा को उत्पन्न नहीं कर सकती। स्वलक्षी समझ श्रद्धा को विश्वास को उत्पन्न करेगी। बस बात एकदम साफ क्लियर है, लेकिन श्रद्धा ज्ञान को उत्पन्न करते ऐसी बात नहीं है। ज्ञान ही श्रद्धा को उत्पन्न करता है, लेकिन वो ज्ञान का प्रकार स्वलक्ष्य वाला होना चाहिए। बस उतनी सी बात है। ज्ञान में समझ में आए, परंतु प्रतीति ऐसी यथार्थ होनी चाहिए। समझ के साथ साथ विश्वास, प्रतीति मैंने खात्री, विश्वास, श्रद्धा साथ साथ होना चाहिए। इस प्रकार का समझ होनी चाहिए, उसको स्वलक्षी समझ कहने में आते हैं। अगर खोले तो उतनी सी बात है। उसमें स्वलक्षी समझ हो तो विश्वास अवश्य आएगा, और परलक्षी समझ में कितना भी साल, कितने साल तक आप समझते रहो, पढ़ते रहो, विश्वास नहीं आएगा। स्वलक्षी मैंने अपने आप को शामिल करना, इन्वॉल्व करना है। क्या? अपने आप को इन्वॉल्व करना। जैसे एक दृष्टांत ले ले खोलने के हिसाब से कि अनंत काल से हमारी आत्मा परिभ्रमण कर रही है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, नहीं चाहते हुए भी मरना पड़ता है, और नहीं चाहते हैं वहां जन्म लेना पड़ता है, नहीं चाहते हैं उनके साथ रहना पड़ता है, बोलना पड़ता है, पर दुखी होना पड़ता है। नहीं चाहते वो भी दुखी होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? संसार के सभी प्राणी दुखी ही दुखी है, बहुत क्लेश में जीवन चलता है। तब हम समझते हैं कि इस अनंत काल का दुख कैसे मिटे, तो समझ में ये आया कि इसके लिए हमें नहीं, जो इलाज करना है उसकी प्राप्ति नहीं है, तो हमको उसका दुख, उसकी चिंता, उसकी वेदना कितनी आई, आनी चाहिए ऐसा समझते हैं, फिर नहीं क्यों आती है? हमारे मुमुक्षु में से 99% से ज्यादा परसेंट वेदना में नहीं आते, परिभ्रमण की वेदना में नहीं आते। 100 मुमुक्षु इकट्ठे होंगे, 99 तो उसमें वेदना में नहीं आए होंगे, और 1000 में भी शायद 1-2 आए होंगे। ये तो फर्स्ट स्टेज है इसका। परिभ्रमण का निषेध, बहुत कड़ा निषेध का मतलब ही इसकी वेदना है। और परिभ्रमण का वेदना नहीं है इसका मतलब इसका निषेध नहीं है। तो जिसका निषेध नहीं है वो जाएगा कहां से, मिटेगा कहां से? सीधी साधी हिसाब की बात है। मतलब वेदना में हम नहीं आते जानते हुए भी, इसका मतलब कि हमारी समझ पर लक्षी है, स्वलक्षी नहीं है। इसलिए हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। एक चिंता का विषय है जन्म मरण होता है कि हमारा मृत्यु हो जाएगी, फिर जन्म धारण होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म मरण, ये कहां तक चलने वाला। एक कैंसर होता है तो चिंता करने का सिखाना नहीं पड़ता है मरीज को, पेशेंट को सिखाना पड़ता है उसको। तो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में ले जाते हैं बायोप्सी के लिए, तो पहले से बताएंगे नहीं घर वाले, कोई कैंसर होगा नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, उसको चिंता हो जाएगी। बोर्ड लिखा हुआ होता है कैंसर भी तो डिटेक्ट हुआ नहीं, टेस्ट हुआ नहीं, चिंता चालू हो जाती है कि कहीं कैंसर तो नहीं होगा, निकलेगा तो नहीं। ये सिखाने की चीज नहीं है, क्योंकि पेशेंट अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया बिफोर टेस्टिंग। पहले ही उसने अपने को इन्वॉल्व कर लिया, अरे मेरे को तो इधर ले आया, तो उसको बीपी बढ़ जाता है उसी वक्त, छाती के पटिये भीष में आते हैं और पैर लड़खड़ाने लगते हैं, उसको चेयर में ले जाना पड़ता है, चल के नहीं ले जाते, फिर उसको पैर लड़खड़ाते हैं। ये चिंता तो हमारे परिभ्रमण का कारण है, वो तो कैंसर का दादा है दादा, और वो मौजूद है, फिर भी हमको चिंता नहीं होती है। इसका मतलब कि हमारी समझ पर लक्षी है, हमारा ध्यान अपने आप ऊपर नहीं है, दूसरे पर है। लक्ष्य को ध्यान को एक ही बात है, और ये सबसे बड़ी आपत्ति है। भावना उत्पन्न नहीं होने में, परिभ्रमण का दुख नहीं लगने में, परिभ्रमण की चिंता नहीं होने देने में तो बड़ा दुश्मन है, तो ये परलक्षी है। सारे दिन में ये चेक करो तुम दूसरे के विषय में कितना विकल्प हमारा चलता है। ये चेक कर लो, चाहे वो मुमुक्ष हो, चाहे परिवार वाले हो, चाहे कोई भी हो, हमारा ध्यान दूसरे पर कितना रहता है और अपने आप पर कितना रहता है, देखो चेक करो, पता चल जाएगा पर लक्ष्य है या स्वलक्ष्य है। और ये साबित करने की जरूरत नहीं, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि वेदना नहीं आती है तो पर लक्ष्य है क्या, नहीं है, है ही, पर लक्ष्य ही है, मान लेना, स्वीकार कर लेना चाहिए। एक छोटी मोटी सुविधा सगवड़ नहीं मिलती है तो भी हमारे परिणाम ऊपर नीचे हो जाते हैं, और परिभ्रमण के लिए कुछ नहीं लगे, वाह। फटाके आते हैं ना, उसमें छोटे छोटे आते हैं, उसको लविंगिया बोलते हैं हमारे यहाँ गुजराती में, क्या इसका साइज लवंग जैसा रहता है ना छोटा, तो उसको लविंगिया बोलते हैं। तो हमारी हालत वो है कि लविंगिया से तो डरे और एटम बम से नहीं डरे। छोटी मोटी असुविधा है, प्रतिकूलता है, इससे तो डरते हैं, और ये परिभ्रमण का जन्म मरण का गांठ लेकर के बैठे हैं एटम बम के, उसकी कोई चिंता नहीं। तो ये हालत है परलक्ष की। परलक्ष में कुछ भी समझो बेकार जाएगा। परलक्ष से कितना भी सत्संग करो, कितना भी स्वाध्याय करो, कितना भी विचार करो, ये परलक्ष सब खा जाएगा। हमारे गुजराती में कहावत है, आंधळो वणे ने पाडो चावे। क्या है? अंधा को बोला कि तुम ये रस्सी को गूंथते जाओ, वणे मैंने गूंथना, रस्सी को गूंथते ना, गूंथन की रस्सी होती है, तो उसको बता दिया तो उसमें आग की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अंधा है, वो हाथ में दे दिया सूत दोरी दे दिया तो गूंथेगा रस्सी बनाने के लिए, दो तीन तीन दोरी दे दिया तो तीन दोरी से गूंथ कर। अब उसको पता नहीं था कि पैर के पास एक पड़ा बैठा है बच्चा, भैंसा का पड़ा, मैंने भैंसा का बच्चा, तो जितना भी वो रस्सी इकट्ठी होती है वो चबा देता है। शाम तक रस्सी बनाया, फिर वो बीतने लगा तो इतना टुकड़ा हाथ में आया, अरे इतना रस्सी बनाया कहाँ गया, तो वो पड़ा चबा गया। ऐसे सारा जीवन स्वाध्याय किया, सत्संग किया, ये परलक्ष वाला पाड़ा सब खा गया। ये हालत अब तक बनी रही है। धर्म के साधन करने में हमारी आत्मा ने कोई बाकी नहीं रखा। इतनी तपश्चर्या किया, इतना दान दिया, इतनी यात्रा किया, इतना जाप जप जपे तप तपे, यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लियो, मन मौन रहो, सब कुछ किया, सब पर लक्ष्य से किया। और स्वलक्ष्य करने में आए बहुत तेजी से, जल्दी से आत्म कल्याण हो जाता है, हो सकता है। ये खास ध्यान में लेने की बात है कि समझ में आता है, विश्वास क्यों नहीं आता है कि अपने आप को हम शामिल करते नहीं, इन्वॉल्व नहीं करते। बात तो समझ में आई कि इस जीव का परिभ्रमण हो रहा है, मृत्यु अवश्य है, आने वाली ही है, और एक्सीडेंटली आती है, भरोसा नहीं है कब कौन कब, वो तो जल का बुदबुदा है, फूटने में देर नहीं लगती। और सबसे दुख वाला प्रसंग तो वो है, दुखी प्रसंग, दुख का ज्यादा से ज्यादा दुख का प्रसंग तो वही है। मृत्युंजय का जाप भी काम नहीं करता, मृत्यु को जय नहीं करा सकता, होता है ना। कभी कभी ब्राह्मण लोग ऐसे करते कि ये डेथ बेड पे है, जवान है आदमी, मृत्युंजय का जाप कराओ, मृत्यु नहीं आए, नहीं बन सकता। मृत्युंजय करना है तो परिभ्रमण शिव की वेदना से लेकर के हमें साधक की ऊपर ऊपर की भूमिका में आगे बढ़ना चाहिए, वेद ज्ञान हो करके सम्यक दर्शन तक। सम्यक दर्शन हुआ, उसका परिभ्रमण समाप्त हो गया, लिमिटेड हो गया। जहां तक सम्यक दर्शन नहीं हुए, चैन लेकर बैठना नहीं है, चैन लेकर सोना नहीं होना चाहिए। बस सम्यक दर्शन है वही बहु भ्रमण का नाश का एकमात्र कारण है। ये भव की सेना के सामने सुदर्शन चक्र है, सम्यक दर्शन मैंने सुदर्शन, यहां तक पहुंचना है। परिभ्रमण से वेदना का स्टार्ट होता है ये। और सम्यक दर्शन होने से परिभ्रमण का नाश होने का पक्का हो गया फाइनल, और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ, अल्पकाल में मुक्ति हो जाएगी। दिखते हैं कि ज्ञान में समझ में आता है, परंतु साथ साथ प्रतीति विश्वास ऐसे यथार्थ होनी चाहिए कि यह ज्ञायक मैंने जानने वाला वही मैं हूँ, मैं दूसरा कोई नहीं, फलाना फलाना मैं नहीं, मैं एक आत्मा हूँ जो हमेशा हमेशा जानने का काम कर रहा है, सिर्फ जानने का। जैसे आँख देखने का काम करती है, इसके सिवा कुछ नहीं करती, कर सकती भी नहीं, ऐसे आत्मा ज्ञान नेत्र है, जानने का काम करता है, इसके सिवा दूसरा कुछ कर सकता नहीं। आँख में रोग होता है, कम जानना होता है, लेकिन वो आँख का स्वभाव नहीं है, वो आँख का कार्य नहीं है। ऐसे आत्मा को राग द्वेष मोह होता है, उसका ज्ञान सिकुड़ जाता है, कम जानता है, ये पशु पक्षी कम जानता है, कोई पशु चार इंद्री वाला होता है, जानवर कोई तीन इंद्री वाला, कोई दो इंद्री वाला होता है, कोई एक इंद्री होता है, उसका क्या हुआ, रोग हो गया, उसका जानने का कम हो गया, बिल्कुल नाश तो होगा नहीं, एक इंद्री से दो इंद्री ईयर होती है ना, दो इंद्री है, एक इंद्री तो ये सब्जी के पानी के जीव है, हवा के जीव है, पृथ्वी के जीव है, वो सब एक इंद्री है, दो इंद्री में ईयर अनाज में पैदा होते, सब्जी में निकलती है, क्या बोलते हैं आप हिंदी में, लट, लट बोलते हैं ना, हाँ संस्कृत में इलिका बोलते हैं, इलिका बोलते हैं, गुजराती में ईयल कैसे, दो इंद्रियां, फिर तीन इंद्रिय होता है, ये मक्खी भ्रमर, आंख नहीं होती उसको,
भ्रमर साथ चार इंद्रिय होते
हैं, भ्रमर तो वो जो बिड़ाता है ना, अच्छा कमल, उसको पता नहीं रहता है, उस प्रकार के जो जीव है वो तीन इंद्री वाले होते हैं, ये मक्खी भी देखती नहीं है, माकड़ होते हैं, आंख नहीं होती, माकड़ को भी आंख नहीं होती, तीन इंद्री जीव है, फिर चार इंद्री वाले को आंख मिलती है, फिर पंचेंद्री वाले को पांचों पांच इंद्री, सुनना भी होता है, देखना, सूंघना भी होता है, देखना भी होता है, चखना भी होता है, स्पर्श का भी होता है, स्पर्श इंद्रिय तो एक इंद्रिय में होता है, दो इंद्रिय से फिर मुंह मिलता है, खाने का चालू होता है, तीन इंद्रिय से सूंघना चालू होता है, मक्खी प्रमर, उसको ये नासिका तेज है, कीड़ी, कीड़ी मकोड़ा चींटी, वो तीन इंद्रिय है, उनको आँख नहीं है, फिर कान मिलता है, पंचेंद्रिय में फिर कान मिलता है, वो सुनाई देता है, फिर छठे में मन मिलता है, तो वो ज्ञान खुलता जाता है, जितना राग द्वेष मोह कम होता है, आवरण ज्ञान पर खुलता है, बादल जैसा है, आत्मा तो चैतन्य सूर्य है, ज्ञान सूर्य है, बादल आते हैं बीच में, आवरण आते हैं, तो एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री हो जाता है। अगर हम नहीं सही रास्ते पे चले, सही इलाज नहीं किया आत्मकल्याण का, तो ये सब होने वाला है। हमारे पास जो पांच इंद्रिय और मन विचार शक्ति पूरी ताकत है, अगर इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो मन बिना के प्राणी हो जाएंगे, विचार शक्ति चली जाएगी, ये सब क्यों बिना मन वाले हैं, कि जब मन मिला तो उसने दरकार नहीं किया कि आत्म कल्याण कैसे करना। ज्ञान तो पूरी शक्ति प्रकट करे तो लोकालोक को जाने इतना चमत्कार है, एक सेकंड में, एक समय में तीन लोक को जान ले, स्वर्ग में क्या है, नरक में क्या है, सब जान ले, उतनी ताकत है। अगर खुलता है तो, और सिकुड़ जाता है तो एक इंद्रिय में, वनस्पति में, पानी में, हवा में चला जाता है, जमीन में। मिसयूज किया, क्या किया, मन मिला तो मिसयूज किया, तो कुदरत ने मन छीन लिया। तो ये सब हमारे सामने है सब। अब विवेक विवेक करना है कि हमें क्या करना है। अगर हम हमारा कल्याण को नहीं सोचेंगे तो ये हालत होने वाली है ही, परवशता से ये भोगना पड़ेगा। और भोग के भोगते भोगते हुए भी मनुष्य हुए हैं, प्रारब्ध वशात अब और विवेक कर ले थोड़ा तो काम बन जाएगा, वरना ये गति तिर्यज गति पशु गति सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा संख्या इस गति में, बड़ी संख्या की मात्रा पशु गति में, देव मनुष्य नरक में उतनी संख्या नहीं है जितनी पशु में है। इसलिए प्रतीति विश्वास के साथ हमारी समझ होनी चाहिए, ऐसी समझ होनी चाहिए कि विश्वास जमे, ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृष्टि अपने ऊपर स्थापित कर देनी चाहिए। बाद में चाहे जैसे भाव आ जाए तो भी मैं चैतन्य ही हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा अंतर में से होना चाहिए। रटन रूप हुए वो बात अलग है, ऐसा नहीं होना, रटन से विश्वास नहीं आएगा। तो उस पर थोड़ा और विषय लेंगे कल के स्वाध्याय में, टाइम हो गया है। बसोड़ा यथार्थ भावना मुक्ति नो पाया नो पत्थर से। बद्धी ऊंची भूमिका नो चणतर। नो आधार भावना ऊपर से। जहाँ सुधी यथार्थ भावना के जेनु लक्षण लगनी अने तालावेली छे, कोमा उत्पन्न थाय त्यां सुधी परमार्थ मार्ग में सफलता बीजा कोई उपाय थे तभी अशक्य थे। एवं भावना नु स्वरूप समझी ने ये विषय निभ्रांति નહીં હોવી જોઈએ. એવું તાત્પર્ય છે, એવું અહીં તાત્પર્ય છે.